ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल की नदियों में वातावरणीय बहाव कायम न होने को लेकर जलस्रोतविदों ने जताये चिंता। नेपाल के निर्यात में 5 महीने में 16.5% हुई वृद्धि। सूचना प्रविधि उद्योग के विकास के लिए सरकार ने राष्ट्रपति के समक्ष अध्यादेश किया पेश। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में फैली आग के कारण 150 अरब डॉलर से अधिक की हुई क्षति। अब समाचार विस्तार से। जल विद्युत और सिंचाई के लिए नदियों के पानी को दूसरी जगहों पर भेजने के समय में नदियों में पर्याप्त वातावरणीय बहाव कायम न होने को लेकर जलस्रोतविदों ने चिंता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय जल व्यवस्थापन संस्था ईमी और सिंचाई विभाग द्वारा हाल ही में राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में विज्ञों ने चिंता जताई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नदियों के दोहन को रोकते हुए तीनों तहों की सरकारों और स्थानीय समुदायों को गंभीर होना होगा। बता दें कि 23 साल पहले बनाई गई नेपाल की जल विद्युत नीति में प्रत्येक परियोजना द्वारा कम से कम 10% पानी का वातावरणीय बहाव कायम करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन बहुत ही कम यानी करीब 20% नदी परियोजनाएं ही इस नीति पर अमल करते हुए पाई गई है। जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों के पूरे बहाव का प्रयोग करके जलविहीन बनाए गए नदी खंड में मछली या अन्य जलचरों को ही नहीं बल्कि किसानों के सिंचाई सुविधा से वंचित होने का क्रम बढ़ रहा है। आर्थिक वर्ष 2081-82 के 5 महीने में नेपाल में होने वाले कुल वस्तु निर्यात में 16.5% की बढ़ोतरी होकर निर्यात रकम 73.66 अरब हो गई है। पिछले साल इतनी ही अवधि में निर्यात में 6.1% की कमी दर्ज की गई थी। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा कल शुक्रवार को जारी की गई रिपोर्ट के द्वारा ये जानकारी साझा की गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सूचना प्रविधि आईटी को विदेशी मुद्रा अर्जन करने के उद्योग के रूप में विकसित होने का भरोसा जताया। उन्होंने फेसबुक स्टेटस के माध्यम से बताया कि नेपाल में आईटी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कुछ कानूनों अड़चनें थीं, जिसे कल की मंत्रिपरिषद बैठक ने संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि अब नेपाली आईटी कंपनियों को विदेशों में निवेश करने, विदेशों को शाखा खोलकर पैसे कमाने और कमाए हुए पैसों को कानूनी तौर पर देश में लाने में आसानी होगी। पालपा के सिद्ध बाबा में निर्माणाधीन सुरंग मार्ग का ब्रेक थ्रू आने वाले माघ 8 गते को होगा। सिद्धार्थ राजमार्ग अंतर्गत बुटवल पालपा सड़क खंड में सिद्ध बाबा मंदिर के नजदीक बन रहे बहुचर्चित सुरंग 11 महीनों में ही ब्रेक थ्रू होने की कागार पर पहुंच गई है। ये जानकारी सांसद ठाकुर गैरे ने दी। मनांग के पर्यटकीय स्थल तिलिचोताल के आधार शिविर यानी कि बेस कैंप और थोरालंगा भज्यांग तक राष्ट्रीय प्रसारण ग्रिड की बिजली पहुंची है। राष्ट्रीय प्रसारण लाइन की बिजली जुड़ते ही सौर ऊर्जा की बाध्यता हट गई है। मनांग निस्यांग गांवपालिका वार्ड नंबर 9 खांगसार में 4,250 मीटर ऊंचे स्थान पर रहे बेस कैंप में 50 kVA क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर रखकर बिजली आपूर्ति की जा रही है। ये जानकारी प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग ने दी। राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह की 303वीं जन्म जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस आज देशभर विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाई गई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने पृथ्वी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के बीच सिंह दरबार के मुख्य द्वार पर स्थित पृथ्वी नारायण शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान नेपाली सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। इसी तरह प्रधानमंत्री ओली ने नेपाली एकीकरण अभियान में नेतृत्वकर्ता शाह के साथ ही उस अभियान में शरीक हुए सबके प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल द्वारा आयोजित चाय पान कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ओली सहभागी हुए। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
वाओ, रियल मै छिटो
डाउनलोड त झनै फास्ट।
हे गाइस, के छ त्यस्तो फास्ट?
एनटीसीको 4G
प्रस्तुत छ नेपालस फास्टेस्ट 4G LTE एडवांस नेटवर्क का साथ।
यो त साच्चै नै फास्ट रहेछ।
पछिल्लो पुस्ताको NT4G LTE बिना रोकटोक 250 MBPS सम्मको डाउनलोड साथै HD मुभीज को भरपूर मजा। NT4G LTE सुचारु गर्नका लागि डायल गर्नुहोस् *444# नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा कि गुणस्तरीय इलाज में सभी का पहुंच दिलाने के लिए सरकार जुटी हुई है। आज तनहू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री पौडेल ने कहा कि पैसा के अभाव में इलाज नहीं पाने की अवस्था का अंत करते हुए सभी के इलाज के पहुंच को स्थापित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मधेस में कृषि विश्वविद्यालय का बजट पारित नहीं होने से कामकाज प्रभावित बना हुआ है। चालू आर्थिक वर्ष के पांचवें महीने बीतने के बाद भी विश्वविद्यालय सभा से बजट पारित न होने के कारण आर्थिक अभाव में पठन पाठन से लेकर निर्माणाधीन भवन का काम तक प्रभावित बना हुआ है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ भगवान ठाकुर ने दी। आर्थिक अभाव में नए शैक्षिक सत्र के लिए भरना के प्रवेश परीक्षा भी संचालन नहीं हो पाने और विश्वविद्यालय में कार्यरत 19 कर्मचारी को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, ये बात रजिस्ट्रार डॉ ठाकुर ने बताये। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि निर्णायक राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण के लिए वामपंथी ध्रुवीकरण आवश्यक है। आज दांग के घोराही में आयोजित कार्यक्रम में महासचिव पोखरेल ने कहा कि देश के समृद्धि के लिए मजबूत निर्णायक राष्ट्रीय शक्ति अपरिहार्य है। महासचिव पोखरेल ने यह भी कहा कि BRI समझौता से नेपाल में आए मान्यता स्थापित की है। बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए नक्खूडोल पुल मरम्मत न होने से स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा करने पर बाध्य है। ललितपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 14 के नक्खूडोल और वार्ड नंबर 15 के शैंबू जोड़ने वाले नक्खूडोल परल बीते आश्विन 12 गते से आए बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई थी। मकवानपुर के मनहरी में आज कार दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत हो गई और वहीं 13 लोग घायल हो गए हैं। स्कॉर्पियो और कार एक दूसरे से टकराने के वजह से चालक हेटौरा वार्ड नंबर 4 स्कूल रोड के 60 वर्षीय सुरेंद्र लाल श्रेष्ठ की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी प्रवक्ता एवं DSP श्यामू अर्याल ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के दूसरे बड़े शहर लॉस एंजेलिस के नजदीकी जंगल में मंगलवार सुबह लगी आग पांचवें दिन भी बेकाबू पर है। आग ने फैशन की चकाचौंध वाले लॉस एंजेलिस शहर के बड़े हिस्से को चपेट में ले लिया है और 10,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो गई है। बचाव के लाख प्रयासों के बावजूद 10 लोगों की जान चली गई है और 1,80,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। 2,00,000 से अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। पैसिफिक पैलिसडेस के पहाड़ी तटीय क्षेत्र में 5,300 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई है। मौसम संबंधी डेटा प्रदान करने वाली निजी फर्म AccuWeather ने अनुमान लगाया है कि आग की वजह से लगभग $135 बिलियन से $150 बिलियन तक होगा। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने अभी तक नुकसान का अनुमान नहीं लगाया है। इसके अलावा कंपनी के मुताबिक 2023 में माई के जंगल में लगी आग के कारण $16 अरब का नुकसान हुआ था। वित्तीय सेवा कंपनी JP Morgan ने जानकारी दी कि लॉस एंजेलिस में आग के कारण करीब $10 अरब का इंश्योर्ड नुकसान हो सकता है। आग ने अभी तक 36,000 एकड़ से ज्यादा भूभाग को अपनी चपेट में ले लिया है और वहां की लगभग हर चीज जलाकर खाक कर दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस आग को बड़ी आपदा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि संघीय सरकार 180 दिनों में राहत के 100% उपायों को पूरा करेगी। इनमें वेतन से लेकर बर्बाद भवनों का मलबा उठाना तक होगा, लेकिन तमाम पीड़ितों पर सरकार के प्रयासों को लेकर शक है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। अन्त में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल की नदियों में वातावरणीय बहाव कायम न होने को लेकर जलस्रोतविदों ने जताई चिंता। नेपाल के निर्यात में 5 महीने में 16.5% हुई वृद्धि। सूचना प्रविधि उद्योग के विकास के लिए सरकार ने राष्ट्रपति के समक्ष अध्यादेश किया पेश। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में फैली आग के कारण 150 अरब डॉलर से अधिक की हुई क्षति। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।